अञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादात् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पकरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे
हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है एक सुबह की व्यापक कक्षा में। अध्याय चल रहा है ब्रह्मा जी द्वारा कृष्ण की स्तुति। तो ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी भगवान को ग्वाल बाल रूप में देख रहे हैं और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं दे रहे हैं और हरेक प्रार्थना के श्लोक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कल के श्लोक में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि कहां मैं अपने हाथ के साथ बालिशों के बराबर एक शुद्ध प्राणी जो भौतिक प्रकृति समस्त भौतिक शक्ति मिथ्या अहंकार आकाश वायु जल पृथ्वी से बने खड़े जैसे ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ, कहां आपकी महिमा। आपके शरीर के रोम कुपों से होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ जा रहे हैं जिस तरह खिड़की की जाली के छेदों से धूल कण आते जाते रहते हैं। और आज की प्रार्थना ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती है। तो ब्रह्मा जी अपनी तुलना एक माता के गर्भ में पड़े शिशु के समान कर रहे हैं और पिछले श्लोक में वो बता रहे हैं कि मैं कितना क्षुद्र हूं और आप कितने महान हैं। तो इस तरह की प्रार्थना को बोला जाता है दैन्य बौद्धिक प्रार्थना, जिसमें जो प्रार्थी होता है वो जिसकी प्रार्थना कर रहा है दैन्य बौद्धिक अपनी दैन्यता को दिखा रहा है कि मैं कितना तुच्छ हूँ और आप कितने महान हैं। जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं कि मैं तो एक मल में पड़े हुए कीड़े से भी ज्यादा तुच्छ हूँ, मेरा नाम मेरा स्मरण लेने से ही आपको सारे आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो ये दैन्य बौद्धिक प्रार्थना है, जो प्रार्थी है वो अपनी दैन्यता को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पिछले श्लोक में और आज के श्लोक में आगे और के श्लोक में जो तो ब्रह्मा जी प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो दैन्य बौद्धिक प्रार्थना है। दूसरी तरह की प्रार्थना होती है संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना। संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना में जो प्रार्थी होता है वो अपना सब कुछ समर्पण करने की प्रार्थना करता है भगवान से कि मैं आपको मैं सब कुछ समर्पित करना चाहता हूँ और मेरा आपके प्रश्न अति आकर्षण और बढ़े। तीसरी प्रार्थना होती है लालसामयी प्रार्थना, जिससे प्रार्थी अपनी लालसा प्रकट करता है। जैसे प्रतिदिन हम तुलसी आरती में कहते हैं हो रही अभिलाष विलास कुंजती होगा। तो इसमें हम लालसा प्रकट कर रहे हैं कि हम भगवान के संगी बने, भगवान के साथ हम भगवान के धाम में जाएं और उनकी लीला में प्रवेश कर सकें। तो इस तरह से तीन तरह की प्रार्थनाएं बताई गई हैं और आज की जो प्रार्थना है वो चैन्य बौद्धिक प्रार्थना है। और ब्रह्मा जी इस प्रार्थना में कह रहे हैं कि मैं एक जीव हूं और कह रहे हैं कि आप अधोक्षज हैं। इस यहाँ पे भगवान को वो अधोक्षज के नाम से संबोधित कर रहे हैं। अधोक्षज अधोक्षज मातु अधोक्षज चाद से। अधोक्षज का क्या अर्थ होता है? अधोक्षज शब्द दो शब्दों से बना है, अधम और अक्षज। अधम का अर्थ है नीचे और अक्षज का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा ज्ञान। अक्षज इंद्रियों के द्वारा ज्ञान जो हमने अर्जन किया। अधोक्षज का अर्थ है कि जिसके सामने इंद्रियों के द्वारा अर्जित ज्ञान कुछ हो जाता है, नीचे हो जाता है, उसको कहते हैं अधोक्षज। यानी कि अगर हमें भगवान को देखना है तो हमें वैसी आंखें चाहिए जैसे भगवान की आंखें हैं। हमें भगवान को सुनना है तो हमारे वैसे ही कर्ण होने चाहिए जैसे भगवान के कर्ण हैं। हमने भगवान को अगर छूना है तो हमारी भी त्वचा वैसे ही होनी चाहिए जैसे भगवान की दिव्य त्वचा है। तभी हम भगवान को देख सकेंगे, भगवान को सुन सकेंगे, भगवान को स्पर्श कर सकेंगे, भगवान को सुन सकेंगे। हमारी इंद्रियां भी भगवान की तरह दिव्य होनी चाहिए, तभी हम भगवान को इंद्रियों से देख पाएंगे। अन्यथा भगवान अधोक्षज है, इन भौतिक इंद्रियों से बिल्कुल परे। तो यहाँ ब्रह्मा जी भगवान को अधोक्षज इसलिए कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैंने आपको जानने का प्रयास किया अपनी भौतिक इंद्रियों से और आप इन भौतिक इंद्रियों से परे हैं, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। आपको मैं अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा जान ही नहीं पाऊंगा। तो आप हैं अधोक्षज। और भागवत के दूसरे और तीसरे स्कंद में बताया जाता है कि भगवान ने जब भौतिक जगत की सृष्टि की रचना की तो उसमें सारे तत्व डाल दिए, पंच महाभूत और फिर मन बुद्धि अहंकार सब कुछ डाल दिए, फिर भी वो सृष्टि की रचना नहीं हुई। सृष्टि की रचना तभी हुई जब भगवान ने स्वयं उसमें प्रवेश किया। तो सृष्टि की रचना भगवान ने की और भगवान भागवतों में बताते हैं एवं अहम एवा समम आग्रह कि मैं सबसे पहले मैं ही था। और क्योंकि भगवान सृष्टि से पहले हैं तो सृष्टि की किसी भी वस्तु के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। इसलिए भगवान गीता के दूसरे अध्याय में बता रहे हैं नाम विदुसुरगणा प्रभवा न महर्षया अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वथा कि मुझे ना कोई देवतागण जान सकते हैं ना बड़े बड़े महर्षिगण जान सकते हैं, क्योंकि मैं ही उनकी उत्पत्ति का कारण हूँ। क्योंकि भगवान ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है तो ब्रह्मा जी भगवान के विषय में कैसे जान सकते हैं? साधारण भाषा में हम लोग अपने दादाजी परदादाजी के विषय में कैसे जान सकते हैं? वो हमसे पहले की जनरेशन के हैं। इसीलिए नारायण पर व्यक्ता नारायण जो है शंकराचार्य जी कर रहे हैं इस सृष्टि की रचना से परे हैं। वो पहले से ही थे, वो सृष्टि उन्होंने बाद में की, इसलिए सृष्टि की किसी भी भौतिक वस्तु के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान इस भौतिक सृष्टि से बिल्कुल परे हैं। देखिए इस भौतिक सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड है। चैतन्य चैतन्य तो वर्णन आता है जैसे एक बोरी में सरसों के दाने होते हैं, प्रत्येक सरसों का दाना एक ब्रह्मांड के समान है, असंख्य ब्रह्मांड। और ये जो ब्रह्मांड है सबसे छोटा ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? चार मुख। ऐसे भी ब्रह्मा जी हैं जिनके आठ मुख हैं, बारह मुख हैं, सोलह मुख हैं, हजार मुख हैं, लाख मुख हैं, करोड़ मुख हैं। कल्पना कीजिए आप कितने बड़े बड़े ब्रह्मांड होंगे। वही सारा दृश्य भगवान ने ब्रह्मा जी को द्वारका में दिखाया था। अपने छोटे से कमरे में ब्रह्मा जी ने देखा था कि सारे के सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी आ रहे हैं, उन्होंने सब में मुकुट डाल रखे हैं, असंख्य सिरों वाले ब्रह्मा जी, असंख्य मुकुट, और सब पे सब प्रणाम कर रहे हैं, दिव्य ध्वनियां उत्पन्न हो रही है, उस ध्वनि को सुनकर ही ब्रह्मा जी कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी उनके छोटे से चार मुख वाले ब्रह्मा जी उनको ऐसा लगा कि मैं खरगोश हूं, सारे के सारे बड़े बड़े हाथी हैं। तो ये है आप सृष्टि को सोचिए कितनी बड़ी सृष्टि है। अगर हम समझ लीजिए कि सृष्टि केवल भौतिक जगत को ही लेते हैं तो भौतिक जगत में ही कितने बड़े बड़े विशाल समुद्र, बड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े वन, ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिनकी आयु 3000 वर्ष है, जिनकी परिधि डायमीटर 300 फीट है, सकुआ पेड़ बोला जाता है उनको, अगर इन बड़े बड़े पेड़ों के सामने, बड़े बड़े पर्वतों के सामने एक बड़ा सा जैसे कहते हैं मिस्टर यूनिवर्स भी खड़ा हो जाए तो क्या लगेगा? चींटी के समान। तो ये तो बहुत भौतिक सृष्टि है। उसके बाद भौतिक सृष्टि के इस पृथ्वी ग्रह की बात हो रही है। असंख्य ग्रह हैं, असंख्य तारे हैं, तारों के बीच में आपस में डिस्टेंस बताए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर। तो कितना विशाल ये ब्रह्मांड है, कितना विशाल। और उस ब्रह्मांड के स्वामी हैं ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी जिनके चार मुख हैं, जिनके 12 घंटे हमारे 1000 चतुर्युग के बराबर हैं, 12 घंटे 1000 चतुर्युग के, और जिनकी रात भी 1000 चतुर्युग के बराबर है। और गणना करेंगे तो उनकी आयु कितनी आ जाती है? 311 trillion ईयर। कितने खरबों में हो गया भाई जी? कितने नील? 311 नील। 311 trillion ईयर ब्रह्मा जी की आयु है। ये वो ब्रह्मा जी हैं जिनके हृदय में भगवान कृष्ण ने स्वयं ज्ञान प्रकाशित किया, सारे वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया। ऐसे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैं तो एक माँ के घर में पड़े हुए शिशु के समान हूं। माँ के घर में पड़ा हुआ शिशु कैसा होता है? जैसा कि भागवत में तीर्थ स्कंद में बताया गया है, बिल्कुल असहाय स्थिति में, मल मूत्र के बीच में पड़ा हुआ, चारों तरफ से कीड़े काट रहे हैं उसको, और बड़े दयनीय स्थिति में, बहुत ही दयनीय स्थिति में, मिजरेबल हेल्पलेस कंडीशन। ऐसी स्थिति ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये मेरी स्थिति है। सारे ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड के चीफ इंजीनियर आदि कवि, जिनके हृदय में भगवान ने वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया, वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल अभिज्ञ, कुछ नहीं जानता, बिल्कुल असहाय और दयनीय स्थिति में हूं। तो जब ब्रह्मा जी की ये स्थिति है तो हमारी क्या स्थिति होगी? कुछ ब्रह्मा जी को छोड़ो, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किससे हुई है? गर्भोदक्षाय विष्णु जी से। गर्भोदक्षाय जी विष्णु कहां से आते हैं? महाविष्णु जी से। महाविष्णु जी के बारे में ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में? यस्य निश्चित कालम अथ वरम जीवंती लोमगलिजा जगदंड नाथा विष्णु महान सहि यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम ब्रह्म भजामि। वो महाविष्णु कहते हैं, वो एक सांस लेते हैं तो क्या होता है? असंख्य ब्रह्मांड निकल पड़ते हैं। एक सांस लिया, असंख्य ब्रह्मांड निकल गए, बड़े बड़े ब्रह्मांड। और सांस वापस लिया, ब्रह्मांड वापस समाप्त हो गए। तो ब्रह्मा जी की आयु 311 trillion ईयर, महाविष्णु जी की एक सांस है। जैसे हम लोग भी सांस लेते हैं, हमारी एक सांस से कई सैकड़ों हजारों कीटाणु मर जाते होंगे, और हम सांस लेते हैं कई हजारों कीटाणु मर जाते होंगे। तो ब्रह्मा जी महाविष्णु जी के सामने कीटाणु के समान हुए, और कीटाणु की आयु 311 trillion वर्ष, कल्पना कीजिए। और ये जो महाविष्णु है वो कृष्ण की एक कला है, बस एक कला विशेष, यही सब कुछ नहीं है, एक कला है। तो कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कितने महान हो गए, कितने महान, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, कितने महान होंगे। और ऐसे महान कृष्ण ऐसे घूम रहे हैं एक साधारण से ग्वाल बाल की तरह, हाथ में छड़ी लेकर, सर पे मोर पंख लगाकर, यहां बांसुरी डालकर, छोटे से बच्चे की तरह दौड़ भाग रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं। ये साधारण से कृष्ण जब खेलते हैं तो माता यशोदा उनको बुलाती है दोपहर के समय, चलो कृष्ण बलराम वापिस चलो, देखो सब कितने गंदे हो गए हो, नंद माँ के पिताजी आ गए हैं, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो भोजन करो। और कृष्ण दोपहर में उनके पास जाने लगते हैं तो सारे ग्वाल बाल क्या कहते हैं, हे कन्हैया खबरदार जो गए, अब तुम्हारी बारी है खेल कूद में, अगर तुम गए तो हम तुम्हें दोबारा तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो ऐसे अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी डर जाते हैं और भाग के फिर अपने मित्रों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। फिर यशोदा जी कहते हैं, कृष्ण सुना नहीं तुमने, चलो। तो बेचारे कृष्ण वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे ग्वाल बाल हैं, यहाँ यशोदा हैं, और फिर चुपचाप यशोदा जी उनको पकड़ के ले जाते हैं, ये देखिए। और वही कृष्ण है, माता यशोदा उनको बोलती है, जब वो सामान उठा के लाओ, तो भाग भाग के जाते हैं छोटे से कृष्ण। सामान उठाने का प्रयास करते हैं, बहुत भारी है, उठता नहीं है। सारे के सारे ब्रह्मांड उनके उधर में है, उठता नहीं सामान, यूं कर रहे हैं। भागवत में वर्णन आता है ऐसे ऐसे करते अपनी बाजुओं को, यूं करके फिर उठाने का प्रयास करते हैं और सब उठाने का प्रयास करते हैं, तो सारी गोपियां गाल बाल कितने प्रसन्न होते हैं, कृष्ण उठा नहीं पाएगा ये देखकर। और फिर नंद महाराज के उनके जो उनकी पादुकाएं होती हैं उनको अपने सर पे उठा के ला रहे हैं, सर पे उठा के ला रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं। ये है कृष्ण, कोई अहंकार नहीं, कोई अहंकार नहीं, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, कोई अहंकार नहीं है। राजस्वी यज्ञ में सारे ब्राह्मणों के जूते उतार कर उनके पांव धो रहे हैं, है? महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बन रहे हैं, सारथी बनने का अर्थ यही नहीं है ड्राइवर, चलो रथ चलाना थोड़ा अच्छा है। युद्ध समाप्त होने के बाद सारे घोड़ों को नहलाते थे, उनको साफ करते थे, यानी कि ये सेवा की बाकी क्यों ये असिस्टेंट है संभाल लेना, काम कर रहे हैं सारा काम। तो ये है कृष्ण, ये है कृष्ण अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, और कोई अहंकार नहीं है। अपने आप को भक्तों के अधीन, अहम भक्त पराधीन, भक्तों के पराधीन, पराधीन मतलब कोई स्वतंत्रता नहीं है। गोपियां कहती नाचो तो नाचना शुरू कर देते हैं, चुप हो जाओ चुप होना शुरू कर देते हैं, कोई स्वतंत्रता नहीं, अपने आप को भक्तों के पराधीन, ये है कृष्ण। वास्तव में देखिए हम लोग भी जो अहंकार दिखाते हैं तो उन्हीं लोगों का भी अहंकार दिखाते हैं कि कुछ बराबरी के हों। अगर हमारे पास कोई नई गाड़ी आई है मर्सिडीज, तो मर्सिडीज की चाबी हम किसी कीड़े मकोड़े को नहीं दिखाएंगे, देखो मेरे पास नई गाड़ी आई है, है ना। कोई व्यक्ति बहुत ही सुंदर है, कोई बहुत शक्तिशाली है, वो अपने मसल किसी मक्खी को नहीं दिखाएंगे, देखे कितना शक्तिशाली हूं मैं, तो वो मक्खी मच्छरों के आगे अपना अहंकार नहीं दिखाएंगे। इसी ढंग से भगवान हमारे आगे अपना अहंकार नहीं दिखाते, क्या अहंकार दिखाएंगे कुछ विषयों के आगे भगवान। तो हम लोग मच्छर के समान, मच्छर क्या कोई है ही नहीं हमारा अस्तित्व भगवान के सामने, तो हमारे को अहंकार क्या दिखाएंगे भगवान, क्या दिखाएंगे, दया करते हैं भगवान, चलो आपकी पादुकाएं उठा लेता हूँ, क्या चाहिए आपको, वही कर देता हूँ। और असाधारण बालक बन के घूमते हैं, और हम लोगों को देखो थोड़ा सा कुछ मिल जाए हमें तो ऐसे फूल जाएंगे, ऐसे अहंकारी सुनेंगे कि मुझसे बड़ा कोई आए नहीं, अहम अहम ईश्वर, अहम भोगी, कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, सब कुछ मुझे चाहिए। आई हैव बिल्ट द इकोनॉमी ऑफ दिस एरिया, मैंने ये देखो इकोनॉमी बिल्ड की, आई एम ए सेल्फ मेड मैन, सब कुछ मैंने किया है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी जो भौतिक जगत में हमारी उपलब्धियां हैं, क्या उपलब्धियां, वो सारी प्रकृति का तीन गुणों का प्रभाव है। और जो आध्यात्मिक जगत में उपलब्धि होती है वो भी हमारी उपलब्धि नहीं होती, वो सारी की सारी गुरु वैष्णव की कृपा होती है। हमारा ना तो भौतिक जगत में कुछ अस्तित्व है, ना आध्यात्मिक जगत में, कुछ नहीं। आध्यात्मिक जगत में भी हमारी लक्ष्य की उपलब्धि है तो कृपा है, और भौतिक जगत में हम कुछ रैग्स टू रिचेस स्टोरी है कि झोंपड़ी से हमने महल बना लिया, ये प्रकृति के तीन गुणों का खेल है, हमारा कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग, नथिंग, मोस्ट सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, मोस्ट भी नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है हमारा। एक बार मैं मायापुर में गया था कुछ साल पहले, तो वहां पे मायापुर में जो दो पुजारी हैं जननिवास प्रभु और पंकज आंगरे प्रभु, तो बहुत ही विनम्र भक्त हैं, आपने देखा है उनको, काफी लोगों ने देखा होगा, बहुत ही विनम्र भक्त हैं। तो मैंने उनसे पूछा प्रभु जी हाउ टू बी हम्बल, विनम्र कैसे हुआ जाए। हम चाहते रात से ये प्रश्न होता है कि हम्बल कैसे हुआ जाए, कि जब तक हम भक्ति में विनम्र नहीं है हम कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित नहीं कर सकते। तो मैंने बड़ा पूछा प्रभु जी हाउ टू बी हम्बल, तो हाथ पड़े ऑप्शन, आपके पास निकल भी क्या है, व्हाट इज योर साइज, आकार क्या है आपका, 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर, एक बाल के अग्रभाग का 10,000 हिस्सा तो आपका आकार है, और वो तो हाउ टू बी हम्बल है कि हो कौन, आप बताओ कहां कृष्ण अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी और कहां आप 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर, बाल के अग्रभाग के 10,000 में हिस्से हैं और कोशिश कर रहे हो हम्बल होने की, और क्या मतलब किससे और क्या सुनना पड़ेगा, चाहिए आपको जानना चाहिए, कुछ अस्तित्व नहीं है। और वो इतने विनम्र हैं। देखिए कृष्ण को उन्होंने प्रकृति कैसे आकर्षित किया। एक बार वो बैठे थे तो किसी भक्त ने लाकर, आप मायापुर में राधा माधव हैं और अष्ट सखियां हैं भगवान की, तो किसी भक्त ने लाकर उनको किसी एक सखी के हाथ से एक फूल होता है वो लाके दे दिया। अच्छा, उन्होंने राधा माधव की अष्ट सखियां हैं मायापुर में, तो एक फूल किसी सखी के हाथ में फूल था वो लाके दे दिया। तो उन्होंने सुना और बोला अच्छा ये तुंग मंत्रा के हाथ का है। बोला नहीं नहीं ये तुंग मंत्रा के हाथ का नहीं है, ये इंदुलेखा के हाथ का है। तो भक्त बोला हाँ ये इंदुलेखा जी के हाथ का है। आप समझ रहे हैं मतलब, फूल को सुनते ही जानने वाले गुरु जी ने जान लिया कि किस सखी ने पकड़ा हुआ था ये फूल, कितना निकट का संबंध है उनका भगवान के साथ। और वहां बहुत सी लीलाएं अर्च विग्रह ने, राधा माधव जी ने भी और नरसिंहदेव जी ने बहुत लीलाएं की उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो विनम्र हैं। ओनली बाय ह्यूमिनिटी एंड टॉलरेंस वी कैन अट्रैक्ट कृष्णा। अपने विनम्रता से और सहन शक्ति से हम भगवान को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। भगवान को क्या, भगवान के हम क्या करी दिखाएंगे कि देखो मेरी नई गाड़ी देखो, मेरा मेरी मेरी विद्वत्ता देखो, मुझे इतने श्लोक याद हैं, मेरा कीर्तन देखो, कुछ नहीं। भगवान के अगर हम केवल विनम्र हो जाएं, भगवान उसी से आकर्षित हो जाएंगे। वही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। श्रीला भक्तिकांत ठाकुर महाराज कहते हैं कि तृणाद भी सुने चैन तरोर अपनी सहिष्णुना अमान इना मान दे जीव तनियत सदा हरी। ये प्रत्येक जीव की स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है। और इस स्थिति से हम थोड़ा सा भी ऊंचा हो जाएंगे तो हमें अपने जप से छुट्टी लेनी पड़ेगी। विल हैव टू टेक लीव फ्रॉम अवर चैंटिंग। अगर इस स्थिति से हम अपने को थोड़ा सा भी ऊपर समझेंगे तो घास के पिंजरे से भी ज्यादा विनम्र, ये है हमारी स्थिति। इसके कारण अपने को थोड़ा सा ऊंचा समझ लिया तो हम जप नहीं कर पाएंगे, वो चैंटिंग चैंटिंग नहीं होगा। हमें अपनी स्थिति में आना चाहिए और भगवान का गुणगान करना चाहिए। जितना हम भगवान की महिमा को जानेंगे उतना हम समझेंगे हम कितने तुच्छ हैं। भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान होना चाहिए। इसी तरह से एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है, उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना प्रार्थना की रचना की। ये प्रार्थना ऐसी है, श्रुतिम अप्रे स्मृतिम इतरे भारतम अन्य भावानुभव भीत अहम इही नंदम वंशे यच्चावलंबे परम ब्रह्मा। बहुत से लोग हैं जो इस भाव सागर से, भौतिक जगत से भयभीत होकर श्रुतियों की, स्मृतियों की, पुराणों का अध्ययन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन मैं ना तो श्रुति पढ़ूंगा ना स्मृति ना पुराण, मैं तो केवल नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में परम ब्रह्म खेलते हैं। देखिए मैं तो उस नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में वो कृष्ण परम ब्रह्म साधारण बच्चे की तरह खेलते हैं, मैं तो उनकी पूजा करूंगा। तो भगवान अच्छा लगता है, भगवान को पसंद है, भगवान को आनंद आता है अगर हम भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की गुणगान करें, भगवान के भक्तों की पूजा करें। तो हम सबको अपनी वास्तविक स्थिति में आना है जो कि घास के पिंजरे से ज्यादा विनम्र। तो कैसे आया जाए उस स्थिति में, इस श्लोक से हम कुछ हमें हिंट मिलता है कैसे उस स्थिति में आ सकते हैं या उस स्थिति में हम क्यों नहीं रहते। देखिए यहाँ ब्रह्मा जी अपनी तुलना एक शिशु घर में बड़े शिशु से कर रहे हैं और भगवान की तुलना एक माता से कर रहे हैं। भगवान श्री स्वरूप जी भी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमारा भगवान का संबंध माता और शिशु का है, लेकिन इसके अलावा भी ब्रह्मा जी और भगवान का भी एक संबंध है। वो क्या संबंध है? गुरु और शिष्य का। ब्रह्मा जी शिष्य है और भगवान गुरु है। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रकाशित किया और भगवान ने सृष्टि की रचना की सर्ग और ब्रह्मा जी ने विसर्ग किया, यानी कि सेकेंडरी क्रिएशन। भगवान ने सारे के सारे रॉ मटेरियल ब्रह्मा जी को दे दिए और ब्रह्मा जी ने उन सारे रॉ मटेरियल को मिलाकर सृष्टि की रचना की। सारा ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। ज्ञान मिलने के बाद भी, सारे वेदों का ज्ञान मिलने के बाद भी ब्रह्मा जी अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ समझने लगे। अब मैं देखता हूँ इनको मोहित करके, इस ग्वाल बाल को भगवान समझ रहे अपने आप को, ये उसको मैं मोहित करके देखता हूँ। ब्रह्मा जी अपने आप को कृष्ण से श्रेष्ठ समझने लगे और भगवान को मोहित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी ढंग से हम सभी भक्ति में जुड़ते हैं गुरु और वैष्णवों की कृपा से, लेकिन भक्ति में आने के कुछ समय के बाद ही हम अपने आप को गुरु और वैष्णव से श्रेष्ठ मानना शुरू कर देते हैं, उनको साधारण व्यक्ति समझना शुरू कर देते हैं, और फिर हम भी इसी ढंग से मोहित हो गए जिस ढंग से ब्रह्मा जी मोहित हो रहे हैं। तो इससे हमें यह सीखना है कि हमें ये गलती नहीं करनी है, गुरु को हमें कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। जिस ढंग से ब्रह्मा जी ने कृष्ण को साधारण मनुष्य समझा, उसी ढंग से हम भी गुरु को और वैष्णव को साधारण मनुष्य समझते हैं। हम समझते हैं आई एम एन एक्सपर्ट, हम एक्सपर्ट हो गया, मुझसे अच्छा और कोई वैष्णव नहीं है, जितनी अच्छी माला मेरी होती कोई नहीं कर सकता, पक्की साधना मेरी, मैं सबसे उत्तम हूं। ऐसा भाव हमारा रहेगा तो समझ लीजिए प्राइड कम्स बिफोर फॉल डाउन, हमारा गिरना निश्चित है। बड़े बड़े भक्तों का, बड़े बड़े योगियों का इसी लिए पतन हुआ है कि वो अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं। हम किसी से भी श्रेष्ठ नहीं है, घास का तिनका जिसके ऊपर लोग रौंद के चले आते हैं वैसे का वैसे ही वो पड़ा है। उस तरह जब तक हम अपने आप को उस स्थिति में नहीं लाएंगे हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। मनुष्य जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम भगवत धाम वापस जाएं। प्रति वर्ष हम जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्माष्टमी केवल एक उत्सव ही नहीं है, जन्माष्टमी केवल बड़ी बड़ी लाइनें बड़ी भीड़ भड़कवाई नहीं है, जन्माष्टमी मतलब केवल कलश सेवाएं नहीं है, जन्माष्टमी मतलब केवल पैसे का कलेक्शन करना ही नहीं है, जन्माष्टमी का बहुत गहरा अर्थ है। जन्म भगवान का अवतरण क्यों हुआ? भगवान हम सबको अपने धाम वापस बुलाने आए हैं, ये है जन्माष्टमी का उद्देश्य। तो जन्माष्टमी के दिन हमें याद आनी चाहिए भगवान का निमंत्रण अभी भी है हमारे लिए, इट्स एन ओपन इन्विटेशन, इन्विटेशन इज स्टिल ओपन फॉर मी, भगवान का आमंत्रण पत्र अभी भी मेरे पास पड़ा है, लेकिन मैं इतना धूर्त इतना निकृष्ट इतना दूषित हूँ कि मुझे भगवान के धाम जाने में कोई आकर्षण नहीं है। तो वो आमंत्रण पत्र कई कई युगों से पड़ा हुआ है, कई कई युगों से वो आमंत्रण पत्र ऐसे ही पड़ा हुआ है। हर द्वापर युग में भगवान आते हैं, ब्रह्मा जी एक दिन में हमें आमंत्रण पत्र दे के जाते हैं, भूल गए लिए दोबारा से आ रहा हूँ, लो ये आमंत्रण पत्र, फिर हम उसको रघुपति साइड में नहीं चाहिए अभी बाद में आएंगे। तो जन्माष्टमी का मतलब बहुत गहरा है, भगवान जिस उद्देश्य से आए हैं हमने उस उद्देश्य को पूरा करना है, भगवत धाम जाना है वापस। केवल ऐसे उछल कूद का उत्सव नहीं है, झांकियां देख ली लंबी लाइनों में खड़े हो गए व्रत रख लिया, नहीं, व्रत रखना तो व्रत लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि हाँ इसी जीवन में मुझे भगवत धाम वापस जाना है, वो है असली जन्माष्टमी। तो अगर भगवत धाम वापस जाना है तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि एक ही तरीके जाने का, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण बिना मान शून्य होना पड़ेगा, यानी कि उसको प्रैक्टिकली बताया चैतन्य महाप्रभु ने, त्रिणादपि सुनिश्चय तरोरपि सहिष्णुना, किस ढंग से निर्माण होना है, त्रिणादपि सुनिश्चय होकर। कैसे होंगे त्रिणादपि सुनिश्चय, कैसे होंगे बताइए, आपने कैसे ध्यान करेंगे प्रभु निष्ठा का, कौन हमें ध्यान करवाएगा, गुरु महाराज करवाएंगे, गुरु की आगे का पालन कर 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 ही हम होंगे, अदरवाइज हमारा कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है कि हम भगवत हम जा सके। देखिए सारे के सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है कलयुग के लिए, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 जपिरन्यथा, कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। और ये हरि का नाम हमें कौन देते हैं, गुरु देते हैं। और हमारी औकात देखिए, हमारी अभद्रता देखिए, हमारी दुष्टता देखिए, जिस गुरु के द्वारा हमें हरि नाम मिला उसी गुरु को हम साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। तो जिस गुरु के द्वारा हमें हरि नाम मिला, जिन वैष्णवों के द्वारा हम हरि नाम से जुड़े, अगर हम उनको साधारण मनुष्य समझ रहे हैं तो किस ढंग से हमारी हरि नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी ही नहीं, तो किस ढंग से हम अपना कल्याण कर पाएंगे, समझ रहे ना बात को। गुरु ने हमें हरि नाम दिया, उसी एजेंट को हम साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, तो जो वो वस्तु देगा वो भी साधारण समझेंगे, तभी तो हम मंत्र जप रहे हैं। मंत्र के जपने से क्या होना चाहिए, त्रायते इति मना, उससे सारे दुख सारे कष्ट समाप्त हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं समाप्त हो रहे। चैंट एंड बी हैप्पी, एक सूखा स्लोगन लगता है, हैप्पीनेस ब्लिस आनंद आई लेदा, क्यों हम गुरु और वैष्णव को साधारण समझ रहे हैं। बताया गया सारे शास्त्रों में साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र तथा भाव एव सदभि, कि जो गुरु है वो साक्षात हरि है, वो गुरु साक्षात हरि है, हरि से अभिन्न है। और उधर ये भी बताया गया अभिन्नत्व नाम नामी, कि कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। आप समझ रहे हैं इक्वेशन, समझ रहे हैं, गुरु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा एंड कृष्णा इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम। अगर हम गुरु को साधारण मान रहे हैं इसका मतलब कृष्ण को साधारण मान रहे हैं, इसका मतलब नाम को साधारण मान रहे हैं। जब नाम को साधारण मान रहे हैं तो नाम अपनी दिव्यता कैसे प्रकट करेगा, नाम अपनी दिव्यता कैसे प्रकट करेगा, नाम दिव्य रहेगा ही नहीं। गोलोक प्रेम धने हरि नाम संकीर्तन, ये हरि नाम आता है गोलोक धाम से और हमें लगेगा भौतिक जगत का दिव्यता प्रकट होगी नहीं। अगर गुरु को साधारण मनुष्य मानेंगे तो भगवान और भगवान के धाम अभिन्न है, वृंदावन जाएंगे नहीं तो वृंदावन एक यूपी का एरिया लगेगा, गंदगी दिखाई देंगी। अगर गुरु को साधारण मनुष्य मानेंगे तो गोवर्धन जिसकी हम परिक्रमा करते हैं जो कृष्ण से अभिन्न है वो एक साधारण पर्वत लगेगा। अगर गुरु को साधारण मानेंगे तो विग्रह एक पत्थर की मूर्ति लगेगी। तो कैसे हम प्रगति करेंगे, यही रहेंगे, परिक्रमा भी करेंगे गोवर्धन की, वृंदावन धाम भी जाएंगे, सोलह माला भी करेंगे, रोज आरतियां भी करेंगे, लेकिन जड़ गलत है कि गुरु को साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। ना हरि नाम अपना प्रभाव दिखाएगा, ना विग्रह अपना प्रभाव दिखाएंगे, ना धाम अपना प्रभाव दिखाएगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बहुत जल ने कर श्रवण कीर्तन तदो न पाए कृष्ण पदे प्रेम का, यही भौतिक जगत में बार 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 खड़ते रहेंगे। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज को इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि गुरु को साधारण मनुष्य समझना नारकीय मानसिकता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में सुअर बनते हैं। इतने कठोर वो शब्द बोल रहे हैं, कठोर शब्द बोल रहे हैं आचार्य हैं, बता रहे हैं कि नारकीय मानसिकता है, नरकों में जाते हैं ऐसे व्यक्ति। और ये बताया जा रहा है कि अगर हम अपने आप को वैष्णव कह रहे हैं तो वैष्णव करने का कहने का एक ही अर्थ है कि मैं गुरु का भक्त हूं। अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, बोले कृष्ण से मेरा सीधा संबंध है, अंके बिहारी से मेरा सीधा संबंध है, मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपके साथ दिखावा कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। वैष्णव का अर्थ है जो गुरु और वैष्णवों के भक्त हैं, वैष्णव की पूजा करते हैं, वो है वैष्णव। वैसे वैष्णव पूरे विश्व को बदल सकते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद कह रहे आई डोंट नो कृष्णा, मैं कृष्ण को नहीं जानता, आई नो ओनली श्री भक्ति श्री सरस्वती ठाकुर महाराज। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज क्या कहते हैं कि मेरे गुरु इतने महान हैं कि उन गुरुओं के चरणों की एक रज का कण भी मैं किसी के सर पे डाल दूंगा उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, वो भगवत धाम वापिस चला जाएगा, मेरे गुरु के चरणों की रज में इतनी शक्ति है। तो जब तक हमारा ये अटूट विश्वास गुरु और वैष्णव में नहीं आएगा, सारा का सारा ये जन्माष्टमी महोत्सव, सारी की सारी ये भजन क्रिया जो हम कर रहे हैं, ये केवल दिखावा ही रह जाएगा, हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये एक जड़ है, आदौ श्रद्धा, श्रद्धा यानी गुरु और साधुओं में श्रद्धा, ये हमें लानी ही पड़ेगी, अन्यथा हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जागना पड़ेगा हमें, अन्यथा ये कब तक ऐसा चलेगा, नाउ वी हैव टू वेक अप। और उसके बाद बताया जा रहा है कि गुरु की कृपा से ही हम इस प्रणादपि सुनिश्चित हालत में आ सकते हैं। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं कि कैसे आ सकते हैं। देखिए कई लोग तो ये बोलते हैं साधारण सिख ये है नास्तिकवाद, कुछ लोग तो कृष्ण को मानते हैं और तो कोई भगवान वगवान नहीं है, सब विकास की बातें हैं। उससे थोड़ी बेहतर स्थिति है कि कृष्ण को मान लेते हैं, मंच आएंगे, हाथ खड़े करके आंखें बंद करके कैसे भी करके भगवान के सामने आएंगे, चले जाएंगे, और किसी साधुओं से भक्तों से कोई मतलब नहीं है, कृष्ण और मैं। उसके बाद थोड़ी और उन्नति होगी तो कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु तक आ जाएंगे, लेकिन खुद ही भक्ति कर लेंगे, लेकिन बाकी सब वैष्णवों को कुछ समझेंगे तो बराबर का नहीं है। तो भक्ति अभय ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि जब तक हम वैष्णवों की सेवा नहीं करेंगे और सारे जीवों को आदर नहीं देंगे, हम गुरु को अक्षाधरी नहीं समझ पाएंगे। जब तक तो प्रत्येक वैष्णव को मैं अपने से श्रेष्ठ नहीं मानूंगा, प्रत्येक जीव को यथासंभव आदर नहीं दूंगा, मैं गुरु को भी साक्षात हरि का आदर नहीं दे पाऊंगा। इसलिए प्रैक्टिकल व्यवहारिक जो हमें डीलिंग्स करनी है, प्रत्येक वैष्णव को अपने से श्रेष्ठ समझना है, प्रत्येक जीव को यथारूप आदर देना है, तब जाके हम गुरु को साक्षात हरि का आदर दे पाएंगे और तभी हम प्रणाम भी सुनिश्चित की हालत में आ पाएंगे और तभी हम निरंतर जप कर पाएंगे और तभी हम भगवत धाम वापिस जा पाएंगे। प्रत्येक वैष्णव को अपने से श्रेष्ठ समझना है, प्रत्येक जीव को आदर देना है, तभी इस स्थिति से हम उस स्थिति पे पहुंच पाएंगे। देखिए आचार्यगण कितनी मदद करें, एक एक स्टेप बता रहे कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और ये केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। शिला भक्ति में ठाकुर महाराज इतना सुंदर भजन तुमने सुना होगा, गुरु के कृपा बिंदु दिया करो ही दासे त्रिणा पेखा अति ही नकल सहने बल दिया करो निज माने स्थिहा ही न। गुरु की कृपा क्या होती है? गुरु की अस्थि कृपा ये है कि करो ए दासे त्रिणापेक्षा अति ही ना, कि हे गुरुदेव मुझे ये कृपा करो कि मैं अपने आप को घास के तिनके से भी ज्यादा सहनशील, घास के तिनके से ज्यादा विनम्र बना सकूं, त्रिणापेक्षा अति ही ना उससे भी ज्यादा हीन समझो, और सबको सहनो सकल सहने बल दिया करो, इतनी शक्ति दो कि मैं सहन कर सकूं, और निज माने स्प्रिया ही ना अपने मान की मेरे अंदर कोई स्प्रिया कोई इच्छा ना हो। तो हमें गुरु, ये है गुरु की असली कृपा। गुरु की कृपा से हम अपनी वास्तविक स्थिति में आएंगे, लेकिन जो गुरु की दूसरी कृपा होती है वो कहलाती है कपटी कृपा। कपटी कृपा में गुरु हमें ऐसी स्थिति में लाएंगे जहां हमें बहुत यश मिलेगा, बहुत धन मिलेगा, बहुत नाम मिलेगा, तो शिष्य फूल रहा बहुत कृपा हो रही है, वो गुरु की कपटी कृपा है, क्योंकि हम कपटी शिष्य हैं, हम चाहते ही यही है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। हमें यश चाहिए तो गुरुदेव ऐसी स्थिति में लाएंगे कि हमें यश मिलेगा, खूब मान खूब नाम मिलेगा, लेकिन कृष्ण से हम दूर होते जा रहे हैं। लेकिन हम वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं तो गुरु हमें ऐसी सेवा देंगे त्रिणापेक्षा अति हीना, आप इनके भी ज्यादा अपने आप को हीन समझेंगे, सकल सहने सबको सहन करेंगे, बल दिया करो शक्ति दो, और तब हम धीरे 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 अपनी वास्तविक स्थिति में आएंगे। योग्यता बिचारे कुछ नहीं पाए तुम्हार करुणासार, मेरे कुछ भी योग्यता नहीं है तुम्हार करुणासार, सब का सब तुम्हारी करुणा तुम्हारी कृपा से ही संभव हो पा रहा है। तो इस ढंग से हम करेंगे तो हम कभी भी गुरु को साधारण मनुष्य नहीं मान पाएंगे। यदि जिनसे ब्रह्मा जी मोहित हुए हैं हम मोहित नहीं होंगे। अगर हम गुरु को साधारण मनुष्य नहीं मान रहे या हम गुरु को साधारण मनुष्य समझ रहे हैं तो एक तरीके से हम सब भी मायावादी हो गए। अब समझे मायावादी क्या कहते हैं कि सब भगवान है गुरु भी भगवान है, नहीं हम कहते हैं गुरु सेवक भगवान है, सेव्य भगवान नहीं है, सेवा करने वाला भगवान है, भगवान के समान है। लेकिन अगर हमने गुरु को भगवान के समान नहीं समझा तो हम मायावादी हो जाएंगे। देखिए ना हम गुरु को भगवान मान रहे हैं और ना गुरु के भगवान के समान मान रहे हैं, तब भी हम मायावादी हैं। कोई कह सकता है कैसे? अगर कोई व्यक्ति कह रहा है गुरु भगवान है तो वो मायावादी है, और अगर कोई व्यक्ति गुरु को भगवान के समान भी नहीं मान रहा तो भी वो मायावादी है, कैसे?
क्योंकि अगर गुरु को भगवान के समान नहीं मान रहा तो वास्तव में भगवान को भगवान के समान नहीं मानेगा,
अच्छा उदाहरण बताया कि गुरु की कृपा से हमें भगवान मिल रहे हैं और गुरु को साधारण मानेंगे तो भगवान के पास नहीं जाएंगे, दूसरा गुरु को साधारण मान रहे हैं तो मतलब भगवान के प्रतिनिधि को साधारण मान रहे हैं और भगवान को भी साधारण मान रहे हैं। इसका दूसरा तरीका समझने का ये भी है, मायावादी लोग बोलते हैं कि कृष्ण निराकार है ना, ये जो विग्रह सामने खड़ा है ये तो एक कल्पना है, वैसे तो ना उसके आंखें हैं, अव्यक्त निराकार ब्रह्म सर्वव्यापक ऐसे है, उनकी आंखें नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कि एक वास्तविक हमारे सबकी एक टेंडेंसी रहती है कि कोई सामने रहे ना जो हमें कंट्रोल करे, मैं ईश्वर हूं, मैं ही भोगी हूं, कोई अगर कृष्ण की आंखें हाथ पर होंगे तो मुझे वो नियंता के रूप में रखेंगे, मुझे कंट्रोल करेंगे, तो नहीं चाहिए मुझे ऐसे। उसी ढंग से गुरु भी हैं, लेकिन अगर उनको ये ईश्वर के समान हो गए तो मुझे सब कुछ मानना पड़ेगा, स्मरण है तो मैं नहीं मानूंगा इनको, ताकि मुझे कुछ मेरी फ्रीडम मिलती रहे, मैं अपने आप को कृष्ण समझता रहूं, मैं अपने वो परम भोक्ता समझता रहूं। इस ढंग से गुरु को कृष्ण का कृष्ण के समान स्तर ना देना भी मायावादी है, और मायावादी कृष्णेर अपराधी, तो भक्ति में लगे हुए भी हम कृष्ण के अपराधी हो रहे हैं। तो इसलिए इस बहुत जाल से हमें बाहर निकलना है, सभी वैष्णवों को सम्मान देना है, सभी वैष्णवों को अपने से श्रेष्ठ समझना है, सब जीवों को सम्मान देना है और गुरु को साक्षात हरि समझना है। इस ढंग से जब हम हरि नाम लेंगे तब हरि नाम अपने आप को हमारे हृदय में प्रकट करेंगे, विग्रह अपने आप को प्रकट करेंगे और गुरु की हमें कृपा मिलेगी, तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हुए कृष्ण को अपने हृदय में ला पाएंगे। जन्माष्टमी का अर्थ है कि कृष्ण का जन्म हमारे हृदय में हो, हमारे हृदय में हो, जिस तरह से देव के घर में कृष्ण प्रकट हो गए, हमारी चेतना में कृष्ण को प्रकट होना चाहिए। कितने वर्ष बीत गए जन्माष्टमी मना रहे हैं लेकिन कृष्ण कुछ प्रकट नहीं हुए, वही दूषित चेतना, वही भोगने की इच्छा, तो कब तक चलेगा ये? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो अब तो कर ले, अब तो करो, अथातो मतलब अब तो करो, अब तो जाग जाओ, अब तो पहले तो पशु थे, पक्षी थे, कीड़े मकोड़े थे, अब तो जाग जाओ, पशु जीवन से मनुष्य में आए, मनुष्य से वैष्णव बनने का प्रयास करो, अब तो कर लो, द्रौपदी जी की शरण में आ गए, अब भी निकल रहे, कब करोगे? अथातो अब करो, ब्रह्म जिज्ञासा, जैन जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में अब तो जानो, खावा बंद करो, अब तो करो कुछ, तो फिर से माँ के घर में मल मूत्र कीड़े मकोड़े काटेंगे, फिर से दर्द सहेंगे, अब तो जाग जाओ, इतने सुंदर अवसर, इतना सुनहरी अवसर है, अब तो जागो। तो ये है उसकी जन्माष्टमी और ये श्लोक का है कि हमें कृष्ण को अगर जानना है तो गुरु को जानना पड़ेगा, गुरु से प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा, और गुरु से प्रेम करना है तो वैष्णव समाज में वैष्णवों से प्रेम करना पड़ेगा, उनको आदर देना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ प्रगति कर पाएंगे, अन्यथा केवल दिखावा है और अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वो इसलिए है ना, स्वाभाविक इसलिए है कि हर जीव अपने आप को इंडिपेंडेंट चाहता है, इस तरह का कंट्रोल नहीं चाहता, वो चाहता कि मैं भोगता रहूं, अपने मन के हिसाब से चलूं, मन आया तो ये भक्ति करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसलिए जब गुरु और सीनियर वैष्णव हमें देखते हैं, हमें नियंत्रण करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, हमें बहुत कष्ट होता है। प्रकृति के तीन गुण होंगे, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का प्रभाव है। पूरा भौतिक जगत ऐसा है, पूरी भौतिक रचना क्लेश, भौतिक जगत दुखालय, कचड़ा मौलिक मल के समान, भगवान ने भिन्न प्रकृति, क्या हो निकल जाओ यहां से, भिन्न अलग सेपरेटेड नॉट इंटरेस्टेड। कूड़ा करके घर से बाहर फेंक देते हैं ना, तो भगवान की भिन्न प्रकृति है पौधे की तरफ बाहर। अभी भगवान इतने दयालु हैं, सब कुछ के मालिक होते हुए वो कूड़े का समय कीड़े मकोड़े घूम रहे, हम वो हैं अच्छे कीड़े, भगवान उसमें आ जाते हैं हमें निकालने के लिए कि चलो बाहर चलो 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 चलो, ऐसे भगवान इतने दयालु हैं। भगवान को बिल्कुल रुचि नहीं है उसमें, भगवान आनंद में है, आराम पे आनंद शेखर, आराम पे रासलीला लगे हुए हैं, ग्वाल बालों के साथ खेल कूद रहे हैं, हमारे लिए आ जाते हैं यहाँ पे मल के अंदर कूड़े करकट के अंदर हमें बुलाने के लिए वापस चलो। वही असल कारण यही है, श्रील भक्ति स्वामी महाराज कहते हैं कि इस भौतिक जगत से हमें विरक्ति क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमें जो इस भौतिक जगत से बाहर ले जाने के लिए मैंने एजेंट भेजा है कृष्ण ने, उसको हम कृष्ण का प्रतिनिधि मान ही रहे, उसको तो हम एक साधारण मनुष्य मान रहे, जाकर थोड़ा सा महान पुरुष मान रहे, मेरा तो थोड़े दिन बेटर है, बस थोड़ा सा बेटर है, सामना अच्छी है थोड़े दिन से, बस और कुछ नहीं, ये मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है इसका, भाई 10 साल हो गए इनको, 25 साल हो गए बस, और कोई नहीं मानते, तो कैसे होगा होगा नहीं। श्रवण तीसरा नाम अपराध क्या है, गुरु की अवज्ञा करना साधारण मनुष्य समझना, तो नाम असर ही नहीं करेगा, शास्त्र असर नहीं करेंगे, विग्रह असर नहीं करेगा, कुछ असर नहीं करेगा, आपकी जड़ी खराब है तो क्या असर खराब हो गया। नहीं देखिए, तो भजन क्रिया है ये, तो साधना है ये, जब तो करते रहना है, धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, जितना डिग्री में आप जन्म होते जाएंगे उतनी डिग्री में ये जब अपने आप को रिवील करेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप बिना रहोगे तो जब अच्छा होगा, जब अच्छा होगा तो बिना रहोगे। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा साधना और साधे एक जैसे ही है, जो हमारा लक्ष्य है वही हमारा साधना है, दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, रीइन्फोर्स करते हैं, जब अच्छा होगा तो विनम्र होंगे, विनम्र अच्छा होगा तो जप होगा, दोनों एक दूसरे को शक्ति दे रहे हैं। ऐसे गुरु गुरु ने गुरु है, गुरु है नहीं ना, वो तो मतलब कि डिस्कशन में आने नहीं चाहिए, वो तो आप उनके लिए तो कुछ भी कर लो, थोड़ी है वो तो गुरु हो गया ना, गुरु पिछले पे होगा बता रहे आपका शब्द ज्ञान में कि गुरु कोई प्रमाणिक अप्रमाणिक नहीं होता, गुरु मतलब कृष्ण प्रमाणिक है तो उनका प्रतिनिधि प्रमाणिक, अप्रमाणिक गुरु मतलब शब्द ही नहीं है, अप्रमाणिक गुरु का अर्थ क्या हो, गुरु है ही नहीं, वो चीटर है, वो तो कुछ भी मान लेना, वो तो वही बताया गया कि बहुत ही हम लोग वो दुर्भाग्यशाली जीव है, चीटर चीटर और गेटिंग चीट, जानना पड़ेगा ना श्री गुरु कौन है, इसलिए तो हम यहाँ पे आए, अर्थात भाग्य की इच्छा भी ऐसी है, जो भाग्य और जो हमारी इच्छा है उन्हें उसी के अनुसार हमें गुरु मिलते हैं। और देखिए ये साधु संग करने का अर्थ ही यही है कि हम गुरु की शरण ग्रहण करें, अगर हम कई कई सालों से साधुओं का संग कर रहे हैं और फिर भी शिक्षा ग्रहण करने की कोई इच्छा जागृत नहीं हो रही, किसी भी गुरु प्रमाणिक गुरु के हम शरण में नहीं जा रहे, तो हम साधु संग नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ये टाइम पास एक्टिविटी नहीं है, मनुष्य जीवन टाइम पास करने के लिए नहीं मिला, टाइम पास तो कुत्ता भी नहीं कर लेते हैं, टाइम पास क्या करना है, लोग बोलते क्या करें टाइम पास कर रहा हूँ, जो समय निकल जाए अच्छा अच्छा, तुम समय क्या निकाल रहे हो, समय आपको खा रहा है, हमें खाता जा रहा है, हमें एक एक क्षण समय खा रहा है, हमें आयु हरती वही पुनसान उद्यान अत्यंत नस्त हो, सूर्य के उदय और अस्त होने में समय में खा रहा है, निकल रहा है और कह रहे हम समय को पास कर रहे हैं। तो एक साधु संघ करके गुरु की शरण में जाना है। मनुष्य पशु का एक ही अंतर है, पशु के माता पिता होते हैं, मनुष्य के माता पिता होते हैं। पशु का कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं होता और मनुष्य जीवन में भी आध्यात्मिक गुरु ग्रहण नहीं किया तो व्यस्त। तो अगर हम साधु संघ कर रहे हैं तो हमें जल्दी से गुरु की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसके बाद जानना है ना आज के श्लोक में, यही तो जानना है क्या शास्त्रों में लिखा है, उसकी महिमा के अनुसार अपने आप को चलाना है, शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार अपने आप को अपने जीवन को चलाना है। बस तो उनकी बात को कर ही नहीं रहे ना माता जी, हम दूसरों की चिंता बांधने करें, पहले अपनी चिंता करें। गुरु मतलब माता जी जो प्रमाणिक प्रतिनिधि हो, अप्रमाणिक लोग तो गुरु है ही नहीं ना, झूठे गुरु गुरु कहलाने नहीं चाहिए। ऐसे में कोई व्यक्ति किसी भी चीज को कुछ बोल दे वो थोड़ी हो जाएगा। हाँ वो चीटर्स आर गेटिंग चीटेड, डोंट वांट टू गेट चीटेड, दे गेट चीटर। सत्य गुरु चाहिए, सत्य मिल जाएंगे। सब कुछ करते रहो, धन दो और जगो धाम वापिस जाओ, ठीक है। श्रीला भक्ति सेठ गोवर महाराज कहते हैं कि गुरु का स्मरण करने का एक ही तरीका है, गुरु की सेवा करके। सेवा कीजिए गुरु की, सेवा मतलब बपू सेवा, वाणी सेवा, निर्देश उनके हमारे पास है तो करें। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हुए कि मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, I'm always feeling that my गुरु महाराज इज विद मी। बस अमेरिका में भी गए, अकेले महसूस नहीं किया। ऐसी कोई बात ही नहीं, गुरु के निर्देश हमारे पास है, उन्हीं का हम स्मरण करें, उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को जिए तो गुरु हमारे साथ होंगे हमेशा। ठीक है, मौका मिला अवश्य करना चाहिए। तो उन्हीं का प्रश्न है कि प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज अपने भक्ति श्याम सभी ठाकुर महाराज से 6 या 7 बार मिले हैं मुश्किल से, फिर भी वो भक्ति श्याम सभी ठाकुर महाराज का मूल विश्लेषण को कैसे समझ गए, और कई लोग उनके शिष्य मठ में रहते थे उनके बीच में, वो उनके मूड को नहीं समझ सके। सीधी बात है कि प्रभुपाद जी अभी पहली बार उनको प्रणाम ही कर रहे थे तो देखते ही बोला Why don't you preach the message of Lord Chaitanya all over the world in the language, English language? देखते ही पहली बार देखते ही इंस्ट्रक्शन दे दिए। क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज भी कमल नयन मंदिर है और श्रील प्रभुपाद भी इधर वैकुंठम है, इससे आए अध्यात्म जगत से, ये केवल लीला चल रही है, तुरंत पहचान लिया ये काम करना है बस। और इसके बाद उनके मठ के वासी बोलते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज को कि आप इनको बोलते क्यों नहीं कि मठ में आए, ज्वाइन करें। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज क्या कहते थे, आई नो व्हाट विल डू, आई नो इस समय आने पर बहुत कुछ करेंगे, उनको मालूम था कैसे करना है क्या करना है। ऐसा नहीं प्रभु जी, भक्ति में सब चीजें साफ साफ करनी, एक पैकेज है, ये थोड़ी बोली आजकल मैं वैष्णव का आदर कर रहा हूँ सब छोड़ दिया मैंने, ऐसा नहीं होगा ना। जब तक जप नहीं करेंगे हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी, हम वैष्णव का आदर नहीं कर पाएंगे, अगर वैष्णव का आदर नहीं कर पाएंगे हम जब अच्छा नहीं कर पाएंगे। दोनों चीजें साथ साथ प्रयास करना, सब कुछ प्रयास करना, इकट्ठा ही करना है। ये भौतिक जगह थोड़ी कि फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास आएंगे, फिर ऐसा नहीं है। ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए बताइए। सबसे अच्छा तरीका है श्रद्धा बढ़ाने का कि जो आदेश मिले उसका चुपचाप वैसे पालन करें। जब हम आदेशों का पालन करते हैं तब हमें मालूम चलता है गुरु कितना महान है, तब मालूम चलता है। फिर और आदेश मिले और चुपचाप पालन कर बने और महान है, तो धीरे धीरे गुरु अपने आदेश और सख्त करते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें और उनकी महानता, गुरु अपने आप को छुपा के रखते हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति के लिए गुरु एक साधारण दृश्य प्रतीत होते हैं और एक उच्च कोटि के भक्त के लिए गुरु एक उच्च कोटि की तरह प्रतीत होते हैं। तो निर्भर करता है कि हमारा कितना शरणागति है। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में क्या बताते हैं, हमें नहीं मालूम कृष्ण कौन है कहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं मान लीजिए कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, मान लो और फिर उनकी आज्ञा का पालन करो। जब उनकी आज्ञा का पालन करोगे अपने आप समझ जाओगे कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। इसी ढंग से पहले मान लो गुरु साक्षात हरि हैं, फिर उनकी आज्ञा का पालन करो। फिर उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि वो साक्षात हरि हैं।
गुरु कृष्ण का भेद है और अगर हम गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करते तो कृष्ण की नहीं होती, और कृष्ण की नहीं होती तो कृष्ण के नाम भी रिवील नहीं करेंगे। बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट एक महाराज जी बता रहे थे इस लेक्चर में कि इफ वी डोंट रिस्पेक्ट द गिवर ऑफ इफ वी डोंट रिस्पेक्ट द गिवर ऑफ अवर होली नेम वेवर किंग का होली नेम द होली नेम विल नेवर नेवर रिवील।
बिल्कुल वही बात है, जिसने हमें वो साधन दिया उसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो जो साधन है वो कैसे चलेगा, चलेगा ही नहीं। हरि नाम अपना प्रभाव दिखाएगा ही नहीं। सारी जड़ यही है, हमारी बॉडी है अपने चढ़ने की जड़ यही है। हम लोग गुरु भोगी हैं, कृष्ण भोगी हैं, गुरु भोगी हैं, भोग रहे हैं हम गुरु को, इस शर्म नहीं आती हमें, भोग रहे हैं। बिल्कुल तो इसलिए इस चेतना के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हम इस चेतना में बने रहें और सेवा कर सकें, और ये भजनों को पढ़ना चाहिए, आपस में यही चर्चा करनी चाहिए और एक दूसरे को साव रहना चाहिए। ये असली जन्माष्टमी है, अपनी चेतना को हम शुद्ध करें। तो हमें हमेशा अपने उन भक्तों के संग में रखना चाहिए जो हमेशा गुरु की सेवा में लगे रहते हैं। जितना हम असत्संग करते हैं हमारे को उनका वो प्रभाव आया तो हम भूल जाते हैं अपनी असली बात को।
गुरु ने आदेश दिए और उसके बाद मतलब एक सिंपल लाइन बोल दी और उस टाइम तो अपने आप मतलब बताया था कि बिफोर गुरु ही बस फूल नंबर वन आफ्टर दैट यू मतलब अपना पूरा माइंड लगाना है उसके ऊपर कि कैसे इसको कुछ एकम्प्लिश करना है उस टास्क को। लेकिन मुझे ऐसा होता है कि कई बार मेंटल प्रिपरेशन हो जाती है, ऑलमोस्ट हर बार ही होती है मेंटल प्रिपरेशन की ऐसे हो जाएगा फिर वो काम गलत हो जाता है, वो डिबेट हो जाता है, तो इसमें क्या करना चाहिए।
गुरु का मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिक्टेटर है, कैसे करो ये कुछ वो हिम्मत नहीं हो रही, नो क्वेश्चन। गुरु का बोला क्या है, एक बड़े भाई की तरह है वो, इज अवर फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। बड़ी विनम्रता से हम पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ आ रही तभी तो सीनियर वैष्णव उनसे मदद लेकर पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की गौर प्रेम आनंदे, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।